بہت پرانا سوال ہے، ہزاروں سال سے انسان اس پر سوچتا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، ہو ایم آئی. جیسے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. تو اس طرح کی باتیں بہت کہی جاتی رہی ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو اس کا ٹائٹل ہے مین دی ان نون. اس کتاب کے رائٹر ہیں ڈاکٹر الیکسس کیرل. یہ کتاب چھپی تھی 1935 میں پہلی بار. بہت سے ایڈیشن اس کے چھپے، لیکن اس کتاب میں بھی مین کو نون بنا نہیں سکے تھے وہ. انہوں نے صرف یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اگر کوئی بڑا اسکالر 25 سال تک 25 ایئرس تک اسٹڈی کرے انسان کی، اس کے تمام ریلیٹڈ سبجیکٹ کی، مطلب ہسٹری، سائیکالوجی، بایولوجی، فیزیولوجی وغیرہ جو بھی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، تو 25 سال میں وہ اس کا جواب دے پائے گا. لیکن یہ بھی ایک کہنے کی بات تھی، اس لیے کہ 25 سال سے بھی زیادہ سالوں تک لوگوں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور زیادہ یونیورسل لیول پر بھی. جیسے مثال کے طور پر برٹ رسل نے اپنی اسٹڈی اس وقت شروع کر دی تھی جب وہ ٹین ایج میں تھا، یعنی برٹش فلاسفر، اور 80 سال تک، یعنی کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں سب سے زیادہ اسٹڈی کی تھی برٹ رسل نے. تو 80 ایئرس تک پڑھتا ہی رہا. اب اور جو فلاسفی بنائی اس نے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی فلاسفی نہیں تھی. وہ تو برٹ رسل کو کہا جاتا ہے کہ ہی باز اے فلاسفر اب نو فلاسفی. اور بڑھا کر دیکھے تو 25 سال نہیں، 25,000 سال سے لوگ اس پر سوچ رہے ہیں. جتنے فلاسفرس ہوئے، جتنے ریفارمرس ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے مائنڈ ہوئے اسکالرس، اور تو اسی پر تو سوچتے رہے، اسی پر تو لکھتے رہے. وہ کسی ایسے رزلٹ پر نہیں پہنچے اس پر کنسنسس ہو. تو بات کیا ہے، یہ ہے انسان کی محدودیت ہے، انسان کی لمیٹیشنس ہیں. اس لمیٹیشنس کی بنا پر وہ پہنچ نہیں سکتا فائنل آنسر تک. جیسے آئنسٹین نے کہا تھا کہ ہماری ساری نالج جو ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی، بیان اس سے اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتی. تو بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہمیں جانے کی طاقت ہی نہیں ہے. جیسے اس نے مثال دی تھی کہ دو ٹرینیں ایک ساتھ دوڑ رہی ہیں ایک ہی اسپیڈ سے، اور آپ ایک ٹرین بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے لائن پر دوسری ٹرین دوڑ رہی ہے سیم اسپیڈ سے بالکل، تو آپ کو لگے گا کہ ٹرین ٹھہری ہوئی ہے. اگر الٹا دوڑے، ایک ادھر جائے ایک ادھر جائے، تو آپ کو ڈبل اسپیڈ دکھائی دے گی. یعنی اگر 100 مائل جا رہے تو آپ 200 مائل دکھائی پڑے گا آپ کو. تو ہم ایک کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے دیکھ نہیں سکتے، اور کیبن میں دیکھ کر جو دیکھتے ہیں وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتا ہے، بیان اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اس نے جو بنائی تھیوری وہ تھی، اس کا نام تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. مطلب ایوری آبزرویشن از ریلیٹیو. تو یہ ہے لمیٹیشنس. تو لمیٹیشن کی وجہ سے انسان نے جان پایا. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے پروفٹ کی، پیغمبر کی. ہمارے جو کھوج ہے اپنے مائنڈ سے، उसकी लिमिटेशन जो है उसी के कॉम्पेंसेट करता है वही रिवेलेशन प्रॉफिट। तो यहां पर मैं बेसिकली तीन लिमिटेशंस को मैं जिक्र करूंगा। इंसान की जो लिमिटेशंस हैं वो तीन एतबार से खास तौर पर हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। यानी जिंदगी के एतबार से महदूदियत, इल्म के एतबार से महदूदियत और तहजीब के एतबार से महदूदियत। यानी इंसान की लिमिटेशन जो है बेसिकली तीन एतबार से है, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। लाइफ का मतलब क्या है? हम में हर शख्स जो है वो एक टाइम आता है कि मर जाता है, यानी 100 ईयर्स के आसपास मर जाना है हमें। कोई बादशाह, कोई बड़े से बड़ा, कोई बड़े से बड़ा इंसान अपने को डेथ से बचा नहीं सका। कुरान में है कि कुल नफ्स ज़ायकतुल मौत, हर आदमी को मरना है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेस्टिन टू डाई। और पूरी हिस्ट्री जो नोन हिस्ट्री है 25,000 साल तक तो कुछ न कुछ ट्रेस मिला हिस्ट्री का, इसके आगे जो हिस्ट्री है कभी भी ये अगर कोई आदमी मौत न होती उसको तो आज तक भी जिंदा रहता। वो अभी भी जिंदा आपको नजर आता कि फलाने जगह एक आदमी है जो 25,000 साल से जी रहा है, वो तो आज तक कोई इंसान नहीं। तो ये लिमिटेशन हमारी है कि हम जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें लंबी उम्र मिले, हमेशा हम रहे दुनिया में, लेकिन हम मर जाते हैं। आप जानते हैं कि आजकल साइंस में सबसे रिसर्च हो रही मेडिकल साइंस में। एक जमाना था कि सबसे रिसर्च होती थी थ्रेटिकल साइंस में, अब नहीं है। अब तो या तो अप्लाइड साइंस में रिसर्च होती है या मेडिकल साइंस में। तो बहुत ज्यादा कोशिश की गई तो अब मेडिकल माइंड ने कोशिश की कि इंसान को मरने से बचाया जाए, लेकिन 1% भी कोई कामयाबी नहीं हुई। इंसान को बाल मर रहा है, हर इंसान एक टाइम आता है मर जाता है, 50 साल, 70 साल, 60 साल, 100 साल के आसपास मर जाता है वो। तो यह है लिमिटेशंस लाइफ की, लाइफ की लिमिटेशन। हम अपनी लाइफ को इतना लंबा नहीं कर सकते कि हजारों साल तक जीते रहे। तो इसको मैं कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंसान की महदूदियत। अब अगर इसको आप न माने महदूदियत को तो क्या होगा? आपका पूरा बिहेवियर अनरियलिस्टिक हो जाएगा, अनरियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक अप्रोच जब आएगा जब अपनी महदूदियत को माने। मैंने जो स्टडी की है और जो मैंने समझा है, सबसे बड़ी नॉलेज जो है ये जानना कि मेरी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि आप जाने कि आप इल्म के आखिरी हद तक नहीं पहुंच सकते। फारसी का एक बहुत अच्छा दो लाइन है उसकी, आकस के न दानत व बेदानत के बेदानत, दर जहल मुरक्कब व बदत दर बेमानत। वाकस के बेदानत व बेदानत के न दानत, उनीस खरे लंग ब मंजिल बेरसानत। इसका मतलब यह है कि एक आदमी जो जानता नहीं लेकिन समझता है कि मैं जानता हूं, तो वो हमेशा जहल मुरक्कब मुबतला रहता है, कभी भी जान नहीं पाता। ये जानता नहीं है लेकिन इस भ्रम में है कि मैं तो जानता हूं, तो हमेशा वो जहल मुरक्कब में रहता है। जहल मुरक्कब कहते हैं जानता कुछ ना हो और समझे कि मैं तो जानता हूं, इसी भ्रम में जीता और मर जाता है। اور دوسری لائن یہ ہے کہ جو شخص جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا نہیں, اس کی مثال بھی ایک لنگڑے خچر کی ہے, کبھی نہ کبھی مندر میں پہنچ جائے گا. تو اس دنیا میں جو بھی زیادہ جانا جس نے, اسے یہی جانا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا. سوکریٹس جو ہے دنیا میں سب سے بڑا تھنکر مانا جاتا ہے جو گریس میں پیدا ہوا, تھنکرز کے فہرست میں ٹاپ پر اس کا نام ہے سوکریٹس کا. تو کسی نے اسے پوچھا کہ آپ زائد زندگی علم حاصل کرتے رہے تو آپ نے کیا جانا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. تو جو آدمی, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو آور لمیٹیشنس. تو ہماری عمر محدود ہے, ہم سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم ہمیشہ جی سکتے ہیں, تو ہماری ساری پلاننگ غلط ہو جائے گی, ہماری ساری پلاننگ غلط ہو جائے گی. تو سب سے پہلی جو محدودیت اس کو ہمیں فیس کرنا ہے, وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہے کہ ہمیں محدود عمر ملی ہے, اسی محدود عمر میں مر جانا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے اسی محدود عمر میں کر لو. اگر یہ سمجھ کر پلاننگ کریں آپ کہ آپ کو تو 25,000 سال جینا ہے, تو ساری پلاننگ آپ کی غلط ہو جائے گی. دوسری جو محدودیت ہے یا لمیٹیشن ہے, وہ ہے علم کی, نالج کی. دیکھیے, یہ جو باقاعدہ جو ڈسپلنڈ جو پیدا ہوا, ڈسپلنڈ وے میں سوچنا, ڈسپلنڈ وے میں جاننا, ڈسپلنڈ نالج جس کو کہتے ہیں, تو فلاسفی سے شروع ہوا. اور فلاسفی جو ہے آج تک کچھ کہیں پہنچی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے جتنے بڑے مائنڈ تھے, بڑے مائنڈ, سوکریٹس اور پلیٹو, ایرسٹاٹل سے لے کر ہزار بہترین مائنڈ جو تھے فلاسفی میں لگے, لیکن فلاسفی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکی. فلسفی سر حقیقت نہ توانست کشود, گشت راز دیگر آراز کر افشا می کر. تو کسی بھی فلاسفر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم کو میں نے پورا پا لیا. کیوں؟ لمیٹیشنز. ہمارا مائنڈ جو کام کرتا ہے, جو ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر جس میں ہم سوچتے ہیں, جو فریم ورک ہے جس میں ہم سوچتے ہیں, وہ لمیٹڈ ہے. ایک حد آ جاتی ہے. اسی لیے ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ جانے نہیں, ابھی تو اور بھی ہے, ابھی اور بھی ہے. جسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک زمانے مانا جاتا تھا کہ میٹر جو ہے ایٹم کا مجموعہ ہے. ایٹم کو سمجھتے تھے کہ جز لا تجزا ہے, یعنی آخری ہے, اس کو اسپلٹ نہیں ہو سکتا. اب میٹر اسپلٹ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ سب الیکٹران ہے, اور الیکٹران کیا ہے؟ وہ ایک میٹ ڈانس ہے میٹر کا. یعنی الیکٹران کی حد پہ پہنچ کے معلوم ہوا کہ وہ تو نہ تو آبزرویبل ہے, نہ آپ اسے دیکھ سکتے, نہ کچھ کر سکتے. وہ ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھ سے. اسی لیے بہت سی کتابیں چھپی ہیں اس پر, اس میں سے ایک کتاب ہے سلیون کی, اس کا نام ہے لمیٹیشنز آف سائنس. اس میں وہ کہتا ہے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. سائنس تو ہم کو صرف جزئی علم دیتی ہے. کیوں؟ اپنی محدودیت کی وجہ سے. हमारा माइंड महदूद है, हमारी नॉलेज महदूद है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद है, हमारा फ्रेमवर्क महदूद है। तो सबसे बड़ा आलिम वो है जो अपनी बेइल्मी को दरियाफ्त करे, अपनी बेइल्मी को दरियाफ्त करे। अरबी में मसल है कि ला अदरी निस्फुल इल्म, ये कह सकता है कि मैं नहीं जानता यह आधा इल्म है। ला अदरी निस्फुल इल्म, ये कह सकना कि मैं नहीं जानता यह आधा इल्म है। क्योंकि जब आप यह कह सके कि मैं नहीं जानता, तो आपने कम से कम एक सच्चाई को पाया। वो सच्चाई है कि हम नहीं जानते, हमारी लिमिटेशन है। इसीलिए हिंदू फिलॉसफी में माना जाता है कि आखिरी जो स्टेज है वो एम्प्टीनेस है। आदमी एम्प्टी माइंड हो जाए तो समझे कि सबसे बड़ा स्टेज तक पहुंच गया वो। स्वामी विवेकानंद से एक बार कहा गया कि आप हिंदू फिलॉसफी का जिस्ट बताइए, तो ब्लैक बोर्ड था वहां, ब्लैक बोर्ड ने जीरो लिख दिया, जीरो। यानी आखिर में पहुंचते हम जीरो तक, स्टार्ट करते हैं हम इससे कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन आखिर में जहां पहुंचते हैं वो जीरो होता है, एम्प्टीनेस होता है। तो महदूदियत जो है इंसान की, इससे वही बेखबर हो सकता है जो जिसको इल्म ना हो, इसे कुछ स्टडी नहीं की हो, जो समझे कि मैं जानता हूं। एक बार था मैं गया महाराष्ट्र में एक गांव में, तो वहां कोई साहब कहां ठहरा था मैं, तो उनका बच्चा, छोटा सा बच्चा था, तो वो कहता था वहां की जुबान में, हमको सब मालूम है, हम वहां कहते हैं हमको, हमको सब मालूम है। तो मैं कहा कि ये बच्चा क्या जानता है, अभी तो मुश्किल तो टीनेजर होगा शायद वो, तो पहले उनका बाप नहीं सिखाता था, तो देखो कभी ये मत कहना कि हम नहीं जानते, कहो हमको सब मालूम है। अब देखिए अभी वो एक टीनेजर है, उसने क्या जाना, लेकिन बाप उल्टी खुराक उसको दे रहा है। ये कहो कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हम क्या जानेंगे। तो ये सबसे बड़ा इल्म है कि आप ये दरियाफ्त करें, ये डिस्कवर करें कि मैं नहीं जानता। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि अब से बहुत पहले 1940 में मेरे साथ एक वाक्य हुआ जिसको मैंने यहां बयान किया है। उस वक्त मेरा ये मिजाज बन गया कि आई डोंट नो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हमेशा यह होता है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। अभी कल की बात है, परसों की बात है, एक हदीस को हम तहकीक करने लगे, छोटी सी हदीस, ला तक्तबू अन्नी गैर कुरान, छोटी सी हदीस है, इस पर पूरा दिन बीत गया हमारा। मौला जकवान साहब ने इंटरनेट तलाश किया, किताबों में तलाश किया, हम लोगों ने मिलकर पूरा दिन का, दो दिन बीत गए इसी में, एक छोटी सी हदीस में। तो मेरा मिजाज बचपन से यह बन गया कि आई डोंट नो। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आई डोंट नो होता है, इसलिए मैं खोज करता हूं, लर्निंग करता हूं, डिस्कशन करता हूं, किताबें देखता हूं। ये नहीं कि फर्ज कर लो कि हमको सब मालूम है, ऐसा मैं नहीं करता। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है। हमको सब मालूम है, ये अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है। तो इंसान की एक महदूदियत यह है कि वो हमेशा जी नहीं सकता, उसको मरना मुकद्दर है उसके लिए। इसलिए इंसान की प्लानिंग जो है डेथ बेस्ड होनी चाहिए। यानी लोग बनाते हैं बर्थडे, मैं कहता हूं डेथ डे मनाओ। बर्थडे क्या मतलब है, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने मेरी जिंदगी वही लिख दी है कब तक मुझे जीना है। तो हर अगला साल वो तो वो होता है, यानी काउंटडाउन होता है, یعنی پہلے دن شروع ہوتا ہے. میں جب پیدا ہوا فرض کیا کہ میری عمر خدا نے لکھ دی ہے 50 سال, تو اگلے سال کاؤنٹ ڈاؤن ہو کر کے 49 ہو گئی, پھر 48 ہو گئی, پھر 47 ہو گئی, گھٹ رہی گھٹ رہی گھٹ رہی گھٹ رہی. تو میں موت کی طرف جا رہا ہوں, زندگی کی طرف نہیں. تو ہر آدمی کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات زندگی کے بارے میں یہ کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمارا سفر موت کی طرف سفر ہے, زندگی کی طرف سفر نہیں ہے. زندگی شروع ہوا, اب جا رہا ہے موت کی طرف. جب یہ سوچ ہوگی تبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے اندر ریئلسٹک اپروچ آئے, ورنہ ہوا مڑتے رہیں گے, ہوا مڑتے رہیں گے, ہوا مڑتے رہیں گے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی اچھی ہیلتھ تھی ان کی, بہت اچھا مائنڈ تھا ان کا, وہ بولتے تھے تو اس طرح بولتے جیسے کہ انہیں 1000 سال جینا ہے, ایسا تقریر کرتے تھے. ان میں سے ایک صاحب تھے, ان کا برین ہیمریج ہو گیا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو, بہت اچھی صحت تھی, برین ہیمریج ہو اچانک مر گئے. ایک اور صاحب تھے, ان کو بھی میں دیکھا اپنی آنکھ سے, بالکل سرخ سفید تھے, بالکل بہت تندرست. اس بات کیا ہوا, وہ جو کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, پیٹ میں جو ہوتا ہے نہیں ٹیومر نہیں نہیں جو آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے چھوڑا سا اپینڈیسائٹس, اپینڈیسائٹس وہ پھٹ گیا ان کا, بہت میری آنکھوں کے سامنے ان کا وہ بالکل سرخ سفید آدمی تھا. ابھی عمر کو 45 اوور ہوگی شاید ان کی. تو اپینڈکس جو تھا, اپینڈکس جب پھٹ جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں, تو پھٹنے کے بعد فوراً باڈی میں زہر پھیل جاتا ہے. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ موت کا نام بھی نہیں لیتے تھے, اتنا اچھا حالت تھی ان کی, اور برین ہیمج ہوا مر گئے. دوسرے کو دیکھا کہ میں نے, وہ بھی بالکل تندرست, اچھا باتیں کرتے بڑی بڑی, ان کا وہ پھٹ گیا, وہ اپینڈکس ان کا مر گئے. تو انسان جو ہے اگر یہ نہ جانے کہ میری لمیٹیشنز ہیں, میں موت کی طرف جا رہا ہوں زندگی کی طرف نہیں جا رہا ہوں, تو وہ سرکش ہو جائے گا, سرکش بڑی بڑی باتیں کرے گا. ایسے اگر آدمی یہ جانے کہ میری نالج کے بارے میں لمیٹیشن ہے, اس بات کو سب سے سائنٹسٹ جانتا ہے. میرا خیال کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے اوور اسپوکن نہیں ہوتا, جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ سب ان کی زبان بہت ہی انڈر ٹون ہو کے بولتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی لمیٹیشن کو. تو سائنٹسٹ کبھی بھی آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتا, اور اسپیکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کی سے بے خبر ہوں, جو سائنس کی سائنٹیفک ٹریننگ جس کی نہ ہوئی ہو. تو دوسرا جو لمیٹیشنز ہے وہ ہے نالج کا, علم کا, کیونکہ جو وہ چاہیے, جو ڈیٹا چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے, محدود ڈیٹا لے کر کے ہم سوچتے ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے, وحی, پیغمبر. یعنی اتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا آئنسٹین, ساری زندگی اس نے مطالعہ کیا نیچر کا, کائنات کا, آخر میں کیا کہا اس نے, دا موسٹ انکنسیویبل فیکٹ اباؤٹ نیچر از دیٹ از کنسیویبل. سب سے زیادہ ناقابل فہم بات نیچر کے بارے میں یہ کہ وہ قابل فہم ہے, اس میں بڑھ گیا وہ. کیوں, وہی کا اس کو, یعنی وہی سے مدد نہیں لے سکا تھا وہ. وہ صرف اپنے, یعنی اپنے لیبورٹری میں اپنے جو سائنٹیفک طریقے ہیں اسی میں جیتا رہا, اسی میں مر گیا وہ. تو کوئی بھی سائنس, کوئی بھی یعنی سیکولر जानकारी नहीं दे सकता। इसकी तलाफी कौन करता है? पैगंबर। इसलिए कुरान मजीद में देखिए है कि वमा उती तो मुनली में अल्लाह कलीला रूह रूह बिन रबी वमा उती तो मुनली में अल्लाह कलीला। यहां रूह जो है रूह के माने में नहीं है, स्पिरिट के माने में नहीं है, यह वही के माने में है कि खुदा ने वही क्यों भेजी? क्योंकि तुम्हारे पास इल्म कलील है, लिमिटेड नॉलेज है। तुम्हारी लिमिटेड नॉलेज को की तलाफी के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए खुदा ने पैगंबर भेजे जो इन पर वही उतरी और वही के जरिए से उन्हें पूरी नॉलेज दी इंसान को। तो जो आदमी चाहे फिलासफर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, या कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, अगर वही से मदद नहीं लेता वो तो क्या होगा? वो जिएगा कंफ्यूजन में, बिल्डरमेंट में, क्योंकि जो भी इल्म उसके पास है वो सब लिमिटेड है। अनलिमिटेड इल्म किसी के पास नहीं है। तो इंसान को खुदा ने लिमिटेड नॉलेज दे करके ये उसको सबक दिया कि तुमको अपनी इस कमी की तलाफी के लिए पैगंबर का सहारा लेना चाहिए, वरना तुम कंफ्यूजन में जियोगे, कंफ्यूजन में भरोगे, क्योंकि वो डेटा तुम्हारे पास है ही नहीं, वो फ्रेमवर्क तुम्हारे पास है ही नहीं जिससे तुम कुल्ली इल्म तक पहुंच सको। तो मैंने आज क्या कि एक लिमिटेशन हमारी ये है कि हमारी लाइफ जो है महदूद है, लाइफ स्पैन बहुत महदूद है, 100 साल के अंदर अंदर हम मर जाते हैं। इसको हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सुरक्षा आएगी। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि यानी इसका इल्म के एतबार से लिमिटेशंस। तो यहां जब तक आप अपनी महदूदियत को न माने तो क्या होगा? जिंदगी भर हवाई हवाई घोड़ा दौड़ाएंगे और किसी कंफ्यूजन में जिएंगे और इसी मर जाएंगे। तो जिंदगी की महदूदियत और नॉलेज की महदूदियत दो बात मैंने अर्ज की। अब तीसरी जो है मैंने अर्ज किया था सिविलाइजेशन की महदूदियत, लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की महदूदियत जो है आजकल आप देख रहे हैं, अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है? इंसान ने चाहा कि अपनी सिविलाइजेशन को आखिरी हद तक तरक्की देता चला जाए, लेकिन मालूम हुआ कि जमीन इनकार कर रही है, जमीन रिफ्यूज कर रही है आपको मजीद आगे बढ़ने के लिए। अभी कोपेनहेगन में देखिए एक हफ्ते का की मीटिंग हुई, वहां पर सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए। यूनाइटेड नेशंस में 192 मेंबर्स हैं, 192 सारे मेंबर कंट्रीज वहां पर मुमकिन नुमाइंदे आए, बड़े हेड आए गवर्नमेंट हो गए, यानी 150 प्राइवेट प्लेन आए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये प्राइवेट प्लेन पे चलते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये किस खतर इनसिंसियर ये लोग हैं, यानी पोल्यूशन के मसले पर आए हैं वहां पर करने के लिए और खुद पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। मैं जब समझता है लोगों को सिंसियर कि ये लोग कहते हैं कि भाई हम कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे, प्राइवेट प्लेन जाएंगे तो हम सिर्फ पोल्यूशन बढ़ाएंगे। नतीजा है कि आज आया पेपर में, आप देखिए टीवी में आ चुका है कि बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई कोपेनहेगन की मीटिंग, कहीं नहीं पहुंच सके वो लोग। जब सिंसियर ना हो आप तो क्या पहुंच जाएंगे आप? यानी पहला टेस्ट यह था कि आप जा रहे हैं इस मसले पर सोचने के लिए कि दुनिया प्रदूषण कैसे घटाया जाए, कैसे घटाया जाए, और जा रहे प्राइवेट प्लेन से। अब जानते हैं कि प्लेन बहुत ज्यादा धुआं निकालता है, बहुत ज्यादा कार्बन निकालता है। तो अगर ये लोग फैसला करते हैं कि भाई देखो हम जा रहे हैं प्रदूषण घटाने के लिए, कम से कम इस सफर में तो कम से कम कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे, इतना भी सिंसियरिटी दिखाई उन्होंने, तो क्या वो निशस्तन गुफ्तन तो बर्खास्तन। तो वो जो किसी ने कहा है कि जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं वो सब टॉकिंग शॉप होती हैं, किसी ने कहा है कि जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें डिफरेंट टॉपिक पर, वो सब क्या होता है, टॉकिंग शॉप। तो ये भी एक टॉकिंग शॉप थी जो कोपेनहेगन में हुई, और कोई उसका रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह कि ये असल बात जो जानने की वो एक हमारी लिमिट आ गई है, लिमिट आ गई। अभी जो फिर आप मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अब आपने देखा होगा उसका उसके जो कैप्शन होता है इतना खतरनाक कैप्शन होता है। यानी अभी था कि आया था कि वो टू डिग्रीज टू डूम्स डे, दो डिग्री अगर हरारत बढ़ जाए सूरज की, दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए सूरज का, तो इस बार डूम डे शुरू हो गया। ऐसे आया था कल परसों काउंट डाउन शुरू हो गया इस जिंदगी का, अब डूम डे की तरफ जा रही हमारी तहजीब। तो क्यों इंसान ने, अभी रिसर्च आई थी कि इंसान ने चाहा कि वो अपनी तहजीब को बढ़ाए। आपको याद होगा कि 1970 में किताब छपी थी, उसका नाम था वो फ्यूचर शॉक, अल्विन टॉफलर की किताब। उसमें इसे प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया अब पहुंची है इंडस्ट्रियल एज में, अब आगे बढ़कर सुपर इंडस्ट्रियल एज में पहुंचने वाली है। 1970 में छपने वाली किताब में कहा गया था कि अब हम पहुंचे हैं इंडस्ट्रियल एज में, अब इससे बढ़कर हम सुपर इंडस्ट्रियल एज में दाखिल होने वाले हैं। देखिए दाखिल कहां हुए, एज ऑफ पोल्यूशन में दाखिल हुए, एज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में दाखिल हुए, सुपर इंडस्ट्रियल एज कहां है। तो मालूम हुआ कि जिस स्पीड से हमने दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं उसी से तो हम सिविलाइजेशन बना सकते हैं। आप रिसोर्सेज को कहीं से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किस चांस से किसी मरीख से आप रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो जमीन पर है उसी से आपको काम चलाना है। तो इतना अंधाधुन सिविलाइजेशन को तरक्की देने के लिए इतना अंधाधुन यानी एक्सपायर किया इस जमीन को कि उसकी याद आ गई। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जमीन ने रिफ्यूज कर दिया है कि हम इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि अगर हम जिस रफ्तार से हम जमीन को एक्सपायर कर रहे हैं उस रफ्तार से भी हमें एक और जमीन चाहिए, एक और जमीन, ऐसी दो जमीनें हो तब हम मेंटेन कर पाएंगे। यानी प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक और जमीन चाहिए। ये तो नहीं, इसलिए हम मेंटेन कर सकते। उसमें बताया गया था कि अगर हम अमेरिकन लाइफ स्टाइल को अगर हम सारी दुनिया में एक एक आदमी तक पहुंचाना चाहें कि हर आदमी अमेरिकन लाइफ स्टाइल पर जीने लगे, तो हमें 5 ऐसे प्लेनेट चाहिए, 5 प्लेनेट चाहिए हमको। तो क्या लिमिटेशंस आ गई? वहां पर देखिए कोपेनहेगन में मैंने पढ़ा कंट्रीज क्या कह रहे हैं वहां पर, क्यों कोई बात तय नहीं हो सकी। हर कंट्री ये कह रहा है कि अभी तो हमारा डेवलपमेंट अभी और हमें करना है, जितना हुआ उससे और ज्यादा करना है, तो हम कैसे वो کاربن ایمیشن کو ہم حد لگائیں. پھر اور کرنا کہاں کرو گے؟ اس زمین پہ تو ممکن نہیں ہے. آپ جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو زمین تو ریفیوز کر رہی ہے کہ یہاں پاسبل نہیں ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے اتنا بڑھ چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, سمندروں کا لیول بڑھ رہا ہے, فریجائل انیمل ختم ہو رہے ہیں, نئی نئی ڈیزیز پیدا ہو رہی ہیں, کتنے لینڈ جو ہے وہ ہو گئے ہیں, بنجر ہو گئے ہیں, دریائیں سوکھ رہی ہیں. تو آلریڈی زمین ریفیوز کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ابھی اور اپنا گروتھ بڑھانا ہے. کیسے بڑھائیں گے آپ بتائیے؟ ریسورسز کو آپ ایکسپورٹ کریں گے کسی اور پلانٹ سے؟ زمین تو انکار کر چکی ہے کہ ہمارے اور گنجائش نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے صحیح کہا تھا, مہاتما گاندھی چونکہ خود سمپل طریقے سے رہتے تھے, وہ سمپلسٹی کی امپورٹنس کو جانتے تھے, تو بہت صحیح کہا تھا انہوں نے کہ وہ ارتھ پرووائڈس انف, ارتھ پرووائڈس انف فار نیڈ بٹ ناٹ فار گریڈ. تو خدا نے جو دنیا بنائی تھی وہ تو تھی سمپل لیونگ کے لیے. آپ نے چاہا کہ وہاں پہ سارے کمفرٹ سارے لگژری حاصل کریں تو وہ تو بنائے, اللہ نے بنائی نہیں اس کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے, سمجھنا چاہیے کہ لمیٹیشنز کیوں آ گئی سولائزیشن کی, کیوں آ گئی. اس لیے آ گئی کہ خدا بتانا چاہتا آپ کو کہ یہ دنیا میں تمہارے فلفلمنٹ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ انسان کو آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے انلمیٹڈ ڈیزائر انسان کے اندر ہے, ہر انسان کے اندر انلمیٹڈ ڈیزائر, انلمیٹڈ ڈیزائر ہے انسان کے اندر. لیکن جس دنیا میں آپ اس ڈیزائر کو فلفل کرنا ہے آپ کو, وہ لمیٹڈ ہے, وہ لمیٹڈ ہے. گلوبل وارمنگ اسی کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے تھے کسی دنیا میں جو لمیٹڈ تھی. یہ سبق کس بات کا ہے؟ اس کو معنی ہے کہ ایک اور دنیا کو اپنا گول بنائیں آپ, ادر دین دس پلینٹ ارتھ, یعنی پیراڈائز کو. اس دنیا میں ہمیں سمپل لیونگ ہی پر وہ کرنا ہے, کنفائن کرنا ہے. وہ جو فارمولا ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, وہی فارمولا پاسبل ہے, وہی ریئلسٹک ہے. یہ فارمولا چلنے والا ہی نہیں ہے کہ خوب ترقی کرو اور خوب اسٹائل وہ خود لائف اسٹائل بڑھاؤ, ہر قسم کی کمفرٹ اور لگژری حاصل کرو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ زمین نے ریفیوز کر دیا ہے کہ اب مزید یعنی سولائزیشن کو آپ اور ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زمین نے انکار کر دیا ہے کہ ہم پاسبل نہیں ہیں. اب کتنی خطرناک بات ہے کہ سارے جو اسٹور تھے پانی کے گلیشیئر کے شکل میں اور یہ آئس برگ کے شکل میں اور جو قطبین پر تو جو آئس کیپ تھی اس کی شکل میں سب پگھل رہے ہیں. پگھلنے کا مطلب کیا ہے؟ فریش واٹر پگھل کر کے سمندر میں چلے جانا, پھر سے سالٹی بن جانا. پانی رہے گا پھر بھی, پانی تو پھر بھی رہے گا لیکن وہ قابل استعمال کے قابل نہیں ہوگا. سمندروں کے لیول بڑھ رہا ہے, آپ جانتے ہیں جتنے کوسٹل ایریاز ہیں سب ڈوبنے والے ہیں کیونکہ برابر لیول بڑھ رہا ہے. تو ان زمین نے ریفیوز کر دیا ہے اس بات کو کہ آپ نے جو لائف اسٹائل چاہتے ہیں جس پر رہنا وہ پاسبل نہیں ہے. وہ لوٹی آپ یہ کوپن ہیگن میں اس میں انہیں یو ٹرن کا فیصلہ لینا تھا لیکن یو ٹرن کوئی تیار نہیں تھا, نہ ڈیولپڈ کنٹریز نہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, اس لیے وہ فیل ہو گئی. کوپن ہیگن میں یو ٹرن لینا تھا انہیں لیکن کون یعنی کوئی ایک بھی कंट्री तैयार नहीं हुआ यूटर्न लेने के लिए, वो और 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 चाहते हैं तो और कमाने क्या, और कमाने तबाही है। तो असल में जो 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 ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्निंग है, वार्निंग एंड से इस बात की कि तुम दुनिया में जिस लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहते हो, जो कंफर्ट चाहते हो, जो लग्जरी चाहते हो, वो तो मिलेगी तुमको पैराडाइज में, आखिरत में। इस दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इस दुनिया का फॉर्मूला था वही सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसने ने फरमाया एक बार मदीना में लोगों को कुछ मुश्किलें पेश आ रही थी, तो लोग परेशान हो रहे थे, तो आपने फरमाया कि अल्लाहुम ला आयश इल्ला आयश अल-आखर। यहां आयश का मतलब है गुड लाइफ। गुड लाइफ सिर्फ आखिरत में मिलेगी। अच्छी जिंदगी जिसमें कंफर्ट हो, लग्जरी हो, हमारी डिजायर पूरी हो रही हो, हमको खुशियां मिल रही हो, वो आखिरत में मिलेगी, दुनिया में नहीं मिल सकती है। तो हमारे दुनिया में एक ही चॉइस है, सिंपल लिविंग हाई थिंक का ऑप्शन ले हम, बस इससे आगे ले गए तो आप अंजाम देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग एकदम यानी इतना बड़ा खतरा है कि सारे साइंटिफिक कम्युनिटी परेशान है। साइंटिफिक कम्युनिटी जो डायरेक्ट ऑब्जर्व करती है उसको, सारी दुनिया में परेशानी परेशान है कि क्या होगा। इस प्लेनेट अर्थ के सिवा कहीं आप जा नहीं सकते, कोई दूसरा अर्थ, कोई दूसरा प्लेनेट अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। ऐसी कभी कभी खबरें आती है कि फला प्लेनेट पर पानी है, फला प्लेनेट पर सब्जा है, ये सब बिल्कुल फजूल बातें होती है, सब फोटोग्राफी के तमाशा होता है। वो हकीकतन जमीन के सिवा न कहीं पानी है, न कहीं सब्जा है, न कहीं लाइफ है, कुछ नहीं है। तो इसी जमीन पर हमें जीना है। तो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं हमारे लिए है कि हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाएं। हाई थिंकिंग मतलब क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी पैदाइश के लिए अपने आप को तैयार करना। हाई थिंकिंग का मतलब यह है मेरे लिए। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट सिंपल लिविंग देर इज नो हाई थिंकिंग, विदाउट हाई थिंकिंग देर इज नो सिंपल लिविंग। Where there is simple living, there is high thinking. And where there is high thinking, there is simple living. तो एक मोमिन के लिए, एक बिलीवर के लिए, एक आदमी जो आखिरत को मानता हो, उसके लिए क्या करना है? उसको ये करना है कि वो सादा जिंदगी अख्तियार करे और सारे अपना जो उसके पास जो कुछ है उसको लगाए आखिरत की तैयारी में, पैराडाइज की तैयारी में। तो हमारा जो मिशन है, मिशन सचमुच लोगों को ये बताने के लिए है। इसी बात को हमें लोगों को बताना है। यहां पर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी टीम जो है एक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको पूरा पकड़ा नहीं है, अधूरा पकड़ा है, उसको पकड़ना चाहिए पूरा। वो क्या सुन्नत है? जो गैदरिंग होती थी मक्का मदीना में, गैदरिंग अपने आप, उस गैदरिंग में जाते थे और वहां पर कुरान सुनाते थे या मैसेज देते थे। तो हम दिल्ली में कहीं भी अगर हैं, हर शहर में गैदरिंग होती है अपने अपने हिसाब से। उस गैदरिंग में पहुंचना है, वहां इंटरेक्ट करना है, डिस्कशन करना है, लिटरेचर बांटना है और किताबें वहां पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमें करना है। तो रसूलुल्लाह साहब क्या करते थे, मक्का में जो गैदरिंग होती थी वो सिर्फ ज्यादातर हरम को लेकर होती थी, यानी काबा के आसपास लोग इकट्ठा होते थे। तो वहां पर आप जाकर बाकायदा दावा वर्क करते थे। مدینے میں ایک چیز تھی کہتے تھے سوق یا اسواق، وہاں پر سوق لگا کرتی تھی. سوق کے معنی ہوتے ہیں بازار، بازار جیسے اب آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہفتے کا سوق لگتی تھی، جو ہاٹ کہا کرتے، ہاٹ ہندی میں ہاٹ کہتے تھے اس کو، اردو بازار، عربی میں سوق. تو ہفتے میں ایک دن لوگ آتے تھے، ہر قسم کی چیزیں وہاں پر بکتی تھی، لوگ جا کے خریدتے تھے. تو مدینے میں ایسے سوق لگا کرتی تھی، مکہ بھی ہوتی تھی سوق. تو ان اسواق میں، ان بازاروں میں رسول اللہ جاتے تھے، انٹریکٹ کرتے تھے، رجسٹر کرتے تھے، قرآن پہنچاتے تھے، ان کو میسج دیتے تھے. تو ہم جس شہر میں بھی ہوں، ہر شہر میں ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، کبھی ریلیجن کے نام پر، کبھی کسی سیکولر سبجیکٹ کے نام پر، جس کو آپ کہتے ہیں سیمینار، کانفرنس وغیرہ، ہر جگہ ہوتی تھی، دلی میں ہوتی ہے برابر. لیکن ہم لوگ ابھی اس کو بہت کم اویل کر پا رہے ہیں. دیر از اے گریٹ اپرچونیٹی فار دا آور. ایک تو ایک آپ خود جلسہ کریں، لیکن آپ کو خود جلسہ کرنے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ جلسے کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کانفرنس کر رہے ہیں، دوسرے لوگ گیدرنگ کر رہے ہیں. وہاں آپ جائیں، باقاعدہ اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. دلی میں تو میں جانتا ہوں کہ اخبار میں چھپتا ہے باقاعدہ کچھ ٹو ڈیز انگیجمنٹ وغیرہ کے نام سے، آج دلی میں کیا ہے، کون سی کانفرنس ہے، کون سی سیمینار ہے، کہاں لوگ اکٹھا ہوں گے، برابر ڈیلی آتا رہتا ہے. تو ہم لوگوں کو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جس طریقے سے اسواق میں، اور جو گیدرنگ وہاں ہوا کرتی، ہر گیدرنگ وہاں جاتے تھے آپ. ہمیں بھی جو ہر شہر میں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، ہر شہر میں پتہ کرنا چاہیے کہ کب کون سی گیدرنگ ہونے والی ہے، وہاں پہنچیں، وہاں اسٹال لگائیں، انٹریکشن کریں، لوگوں سے باتیں کریں. اس کی ضرورت ہے. تو یہ پارشلی ہم کر رہے ہیں ایسا، لیکن ابھی جب تک کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے. اس کو آپ سنت رسول سمجھ کیجئے، یعنی گیدرنگ میں یا کانفرنس جانے کو آپ لکھے کہ رسول اللہ کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سنت رسول پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ مدینے بھی ایسی کرتے تھے اور مکہ بھی ایسی کرتے تھے. رسول اللہ برابر ہر اس گیدرنگ میں جاتے تھے، حالانکہ وہ کرتے تھے دوسرے لوگ جو رسول اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے. وہاں پر سرکس بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ وہاں بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا، وہاں گانا بجانا ہوتا تھا، سرکس ہوتا تھا، طرح طرح کی خرافات ہوتی تھی، خرافات، پھر بھی آپ جاتے تھے وہاں پر. آج آپ جو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پرساد لے کہ نہ لے، میں کہا پرساد لینا فرض ہے، فرض ہے، کیونکہ آپ پرساد سے کٹیں گے تو اس گدرے سے کٹ جائیں گے آپ. مجھے تجربہ ہوتا ہے وہ لوگوں پر کہ گیدرنگ وہاں ہو رہی ہے، وہاں پرساد بٹنے والا ہے، تو مسئلہ بنا لیا کہ پرساد لے کے نہ لے. میں کہتا ہوں پرساد لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائیے اس کو، تاکہ وہاں پہنچ سکیں آپ. اس گیدرنگ کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر اویل کیجیے، اور سمجھ کر اویل کیجیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ اس کا ثواب ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت جو ہے، اس پر آپ اس کو فالو کریں تو اس پر ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو ثواب سمجھ کر کیجیے. ایک تو ایک دعوی ورک ہے، آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کا اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پلس وہ سنت رسول ہونے کے اعتبار سے ثواب بھی ہے. وہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے، ہر جگہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، دلی میں برابر ہوتا ہے، اور ابھی ہم شاید 1% بھی اویئر نہیں کر پائے جو یہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے، شاید 1% بھی اویئر نہیں کر پائے. جیسے ابھی دیکھیے، کل پرسوں یہاں پر ہوا تھا لودھی روڈ پر، बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस थे, टॉप के लोग आए थे, हम लोग उसको अवेल नहीं कर पाए, शायद पार्शियल तौर पर कुछ कर पाए। तो हर शहर में, हर मकाम पर दूसरे लोग जो गैदरिंग करते हैं मुख्तलिफ नामों से, वो कॉन्फ्रेंस के नाम से, सेमिनार के नाम से या किसी और नाम से, तो वहां हमें पहुंचना है, वहां पर हमें इंटरेक्शन करना है, वहां हमें लिटरेचर देना है, वहां हमें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब करना है। क्योंकि इंसान, सारे इंसान अंधेरे में, ये जो मैंने आज कहा कि इंसान जो है तीन लिमिटेशन में घिरा हुआ है, कि हमें मरना है, कोई कोई सोचते नहीं कि मुझे मरना है। आप दिल्ली में घूमिए, आपके शहर जहां भी रहते हैं वहां भी घूमिए, कोई मौत की बात नहीं करता सुनेगा। मेरे बारे में एक किताब छपी है, एक बड़े मदरसे से छपी है वो किताब, मोटी सी किताब, उसका एक चैप्टर है आखिरत नवीसी, इन्हें उसको रेटिकूल किया उन्होंने, एक आलिम ने रेटिकूल किया, क्योंकि हमारे मैगजीन और किताबों में बहुत ज्यादा तस्करा रहता है मौत का, हमारी किताबों में, हमारे मैगजीन जो निकलता है मंथली, उसमें बहुत ज्यादा जिक्र रहता है मौत का, तो उसको उन्होंने रेटिकूल किया कि आखिरत नवीसी करते हैं ये मौत की बातें करते हैं, इतना बेखबर है लोग, इतना ज्यादा बेखबर है लोग। इतना बेखबर है, कोई मौत का कहीं भी आप जाइए कि मौत का चर्चा नहीं करेगा। एक साल ने मुझे बताया कि वो एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, वो तो एक मरने पर गए ताजियत के लिए, वो उन्होंने मौत का जिक्र कर दिया उन्होंने कि मौत तो हम सबको आनी है, मौत तो सबका आखिरी अंजाम मौत है। तो वो गुस्सा हो गए वो साहब, क्या हमको मौत याद दिलाने आए हैं? एक मरने वाला मर गया आंखों के सामने उनका अजीज, लेकिन अपने बारे में नहीं सोच पाए वो कि मुझे मरना है। और एक आलिम जो है उसका हाल यह है कि वो हमारे यहां मौत का चर्चा होता तो वो लिखते हैं कि आखिरत नवीसी करते हैं। अब गौर कीजिए, जैसे कोई ड्रामा नवीसी करे, उसका दर्जा दे दिया उन्होंने, यानी मौत और आखिरत की बातों को वो दर्जा दे दिया जो ड्रामा नवीसी का होता है। एक चैप्टर बाका था उसमें, एक आखिरत नवीसी। इतना बेखबर है लोग मौत के मसले से, सोचते हैं कि हम जी रहे हैं तो जी रहे हैं, फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं कि हम जी रहे हैं तो जीते रहेंगे, बस हमेशा चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से उन्हें मौत याद नहीं आती। ये मामला देखिए इसका है, यानी नॉलेज के बारे में लिमिटेशंस का, मुझे बार बार इसका साबका पड़ता है कि लोग बहस करते समझते कुछ नहीं, खत में टेलीफोन पर मिल करके बार बार मुझे तजुर्बा होता है कि लोग बहस करते रहते हैं, इन्हें अपनी लिमिटेशंस को पता नहीं। जैसे एक साहब एक बार मेरे पास आए कि साहब आप हमारा जो मैगजीन होता है उसका नाम अर रिसाला, दोनों कहते क्या है कि आपका पर्चे का जो नाम है उसी से पता चलता है कि आप पर्चा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा वो कैसे भाई? आपने अपने पर्चे का नाम रखा अर रिसाला, सबसे अच्छा रिसाला, तो जो दावा करे कि हमारा मैगजीन सबसे अच्छा मैगजीन है वो तो उससे गलत क्या हो सकता। तो मैंने कहा भाई आप अरबी दीन नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, रिसाले के माने सबसे अच्छा रिसाला नहीं है, रिसाले के माने रिसाला है भी नहीं अरबी में, रिसाले के माने जरीद, अरबी में कहते हैं जरीदा, मैगजीन को अरबी जरीदा कहते हैं, रिसाला नहीं कहते, रिसाले माने मैसेज, संदेश। तो अरिसाला के माने द मैसेज, बस सबसे अच्छा रिसाला नहीं इसका मतलब है, इसका मतलब है द मैसेज। अब बताइए कि वो जानते कुछ नहीं और बहस कर रहे हैं कि आपके साथ बिल्कुल गलत है, और इसको पढ़ना नहीं चाहिए। तो बार बार मुझे तजर्बा होता है कि आदमी जानता कुछ नहीं, अब्बास ऐसा करता है कि जैसे कि वो वही हमा को सब मालूम है वाली नफ्सियात। हर आदमी हमा को सब मालूम है कि नफ्सियात में जीता है, हालांकि जीना चाहिए कि हमा कुछ नहीं मालूम, हमा कुछ नहीं मालूम। तभी वो जो जिसके अंदर ये होगा कि हमको तो कुछ पता नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सीकिंग स्पिरिट होगी, उसके अंदर रिसेप्टिविटी होगी। फिर जब वो बात कोई मिलेगी उसको तो फौरन पकड़ लेगा उसको। तो लोगों को अपनी लाइफ के बारे में लिमिटेशन का पता नहीं, लोगों को नॉलेज के बारे में अपनी लिमिटेशन का पता नहीं। ऐसे मामला है सिविलाइजेशन का, लोगों को पता ही नहीं कि सिविलाइजेशन जो है तरक्की करते करते उसकी हद आ चुकी है। आप कहां जाएंगे, आप कोपेनहेगन में 192 कंट्रीज अगर क्या कह रहे हैं वहां पर, अभी हमको बहुत कुछ आगे बढ़ना है, अभी हम और तरक्की देना है, बताइए। वो तो तरक्की हद आ चुकी है, आप कहां तरक्की करेंगे। आप कितना तज्जुब की बात है कि कोपेनहेगन में एक हफ्ता बाद मासे के बाद जो ये सामने आया वो यह है, हर मुल्क कहता है कि मुझे और तरक्की चाहिए, मैं कैसे कार्बन एमिशन खत्म करूं, कम करूं, कैसे घटाऊं, मुझे और तरक्की करना है, मुझे अपने लाइफ स्टैंडर्ड और बढ़ाना है। फिर बढ़ाने का मौका ही खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा मसला यह है किसी को अपनी लिमिटेशन को पता नहीं, न कोई ये जानता कि मुझे मरना है, न कोई जानता कि मेरा इल्म है महदूद है, न कोई जानता कि मैं कंफर्ट लग्जरी बेहिसाब हद तक नहीं बरत सकता, मेरी हद आ जाएगी और फिर आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि आप हमें हर एक शख्स इसको सोचे, हम अपनी हद को जाने और दुनिया को बताएं, हम अपनी लिमिटेशन को जाने और दुनिया को बताएं। जितना ज्यादा इसको जानेंगे उतने ज्यादा हम इल्म बढ़ेगा, उतने ज्यादा हम सच्चाई को डिस्कवर कर सकेंगे और उतने ज्यादा हम सीकर बनेंगे, खुदा के सीकर, जन्नत के सीकर। तो यही हकीकत हमें खुद जानना है, इसी हकीकत से हमें दुनिया को बाखबर करना है। मैं दुआ करता हूं हमसे हम सब में यही स्पिरिट पैदा हो। अकुल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम अजमईन।
Okay, we request our online viewers to send in their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. This question is from Ms. Nagma Siddiqui from Delhi. Maulana, by nature, why is man not ready to realize his limitation? By nature, why is man not ready to realize his limitation?
मैं नेचर नहीं कहूंगा, एक हैबिट बन गई है ये कहूंगा मैं, यानी आदत के तौर पर ऐसा हो गया है। नेचर तो आप फितरत को कहते हैं, फितरत लाई लेती फतरना सलेहा। अल्लाह ताला ने नेचर सबका ठीक ठीक बनाया है, नेचर में कोई डिफेक्ट नहीं है, आदत बन जाती है। जैसे कि मैंने अर्ज कहा कि लोग फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूं तो फॉर ग्रांटेड ले लिया कि बस सांस लेता रहूंगा मैं, हालांकि अगर ऑक्सीजन न सप्लाई हो अल्लाह ताला की तरफ से तो हम सांस नहीं ले सकते। बेसिक बात जो है वो ये कि लोग जो है चीजों को फॉर ग्रांटेड देते हैं और सोचते नहीं। तो ऐसा नहीं कि नेचर में कुछ ऐसा गलत बात है, लोग सोचते नहीं। बेसिक कमी जो है मैं समझता हूं वो न सोचने की। तो अल्लाह ताला ने यानी मोर देन 99% अपने आप ही चीज सप्लाई हो रही है हमको, लेस देन 1% हम सोच कर लेते हैं। जैसे बाजार में गए आपने सोचा कि मुझे गिलास चाहिए, ایک گلاس خریدا آپ نے, تو یہ آپ نے سوچ کر جانا کہ گلاس کو مجھے خریدنا ہے, لیکن اس گلاس کو بننے میں جو تو فیکٹرس ہیں, ہزاروں فیکٹر, اس کو سوچا نہیں آپ نے, کیونکہ اس کو فار گارٹڈ لے لیا کہ گلاس تو ہوتا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمی ہے انسان کے اندر وہ نہ سوچنے کی کمی ہے. سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کو آپ پڑھیے, سورہ آل عمران کا آخری رکوع, اس میں سوچ ہی پر سے سب کچھ آتا ہے, سوچ سے ایمان آتا ہے, سوچ سے آخرت کا ڈر آتا ہے, سوچ سے آپ پیغمبر کو پہچان پاتے ہیں, سوچ سے آپ اپنی لمیٹیشن کو جانتے ہیں, ساری باتیں اس ایک رکوع میں بتا دی گئی ہیں. تو کمی یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں, یعنی تدبر تفکر یہ جو چیز ہے کرتے نہیں, کیونکہ خدا کی طرف سے چیزیں اپنے آپ دی آتی رہی ہیں, سورج اپنے آپ لائٹ بھیج رہا ہے, ہیٹ بھیج رہا ہے, ہوا اپنے آپ کو سپلائی کر رہی ہے آکسیجن, زمین میں بہت ہی تناسب کے ساتھ گریویٹی ہے وہ اپنے آپ قائم ہے, سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا فریکشن جس کو ہم خود سے سوچ کر کرتے ہیں تو اسی کو سوچ پاتے ہیں, باقی کو سوچ نہیں پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ سوچنے کی عادت ڈالیں. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اتارا گیا اس لیے کہ لوگ تدبر کریں, لیا دبر وہ آیا تھی. تو سب کچھ انسان کو ملتا ہے سوچنے سے, ساری اسپریچل ترقی, انٹلیکچوئل ترقی, روحانی ترقی سب ہوتی ہے جب آپ اپنی سوچ کو زیادہ ایکٹیویٹ کریں.
دس کوشچن از فرام مسٹر اسرار الحق فرام آئی آئی ٹی کانپور. ان قرآن چیپٹر 67 ورس نمبر 2 اٹ از مینشنڈ, Who has created life and death that he may try you which of you is best in conduct, and he is the mighty, the forgiving. Could you please clarify the meaning of who has created life and death? In what sense are these two different creations?
My question is samjha nahi kya alfaz yaad hai aapko, arabi alfaz? یہ اس میں ہے ملک میں تبارک الذی بیت الملک وہ والا کل شین قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو پیدا کیا, ایک مدت کے بعد موت آتی ہے اس کی, یہ سب ابتلا کے لیے ہے, یعنی ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے, اس دنیا میں پیدا کر کے آپ کو سلیکشن ہو رہا ہے. جنت میں آدم کو پیدا کر دیا گیا تھا بغیر کسی ٹیسٹ لیے بغیر. اب جو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ ایک ٹیسٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کون جنت میں ڈالے جانے قابل ہے, یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کون ہے, اس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ ہر آدمی کے دونوں کندھے پر فرشتے ہیں جو اس کے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اس کی ہر بات کا. تو دنیا میں جو ہے انسان کو پیدا کر کے ایک مدت تک رکھا گیا ہے, اس کو اس کا اسپیچ, اس کا ڈیڈ, اس کا کال, اس کا عمل, ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں. اب اور کوئی اس میں کوئسچن ہے, میں کوئی بات ہے؟
آئی تھنک ہی از ٹیکنگ ڈیتھ اینڈ لائف ایز ٹو ڈفرنٹ کریشن. تو ان کا سوال ہے کہ ان واٹ سینس آر دیز ٹو ڈفرنٹ کریشنز؟
نہیں, ڈفرنٹ کہ اس میں آیت میں نہیں ہے.
جی
ڈفرنٹ نہیں ہے, مطلب زندگی پیدا کی, ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہے, موت آتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ آیت سے تو یہ نہیں نکلتا ایسا.
This question is from Mulana Zakwan Nadvi from Delhi. In chapter 23, verse 60 of Quran, it is mentioned of a true believer, and those who give to others what which they give, while their hearts tremble at the thought that they must return to their Lord. In this verse, word wajilat has been used. What is the importance of this word wajilat in context of this ayat?
Arabic alfaz kya hai? Wajila. Is ayat mein ye hai ki jo hum madad karte hain dusre ki uska zikr hai. الَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ کہ جو بلیورز ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کسی کو جب دیتے ہیں تو کا دل ہل رہا ہوتا ہے دہل رہا ہوتا ہے ڈر سمایا رہتا اندر دل کے اندر اس پر غور کرنے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو آپ ہوتے ہیں گیور وہ ہوتا ہے ٹیکر آپ کو تو فخر رہنا چاہیے کہ میں دینے کی پوزیشن میں ہوں وہ لینے کی پوزیشن میں تو پرائیڈ آنا چاہیے آپ کو اوج بانا چاہیے ناز آنا چاہیے کبر آنا چاہیے لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نہیں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دل میں ڈر سمایا ہوا ہوتا ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود اپنی تصویر دیکھتا ہے آدمی جب وہ دیکھتا ہے دوسرے کو غریب یتیم محتاج اس کو یاد آتا ہے کہ ایسے ہی میں بھی آخرت میں ہو جاؤں گا دنیا میں وہ محتاج ہے آخرت میں خود محتاج ہو جاؤں گا یہ چیز کے دل کو تڑپا دیتی ہے اور اس کا دونا ایک دعا بن جاتا ہے خدایا ایک دن میں بھی تیرے سامنے محتاج کے حصے حاضر ہوگا تو اس وقت مجھے محروم نہ رکھ تو یہ جو آیت میں تصویر دی گئی ہے بلیور کی کہ وہ ہر واقعے میں اپنے لیے ایک نصیحت لیتا ہے جیسے مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک مسلمان نے اپنے اس کو خادم کو لگے وہ مارنے لگے وہ تو رسول اللہ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم جتنا تم کو طاقت ہے اس غلام کے اوپر اس زیادہ طاقت تم کو خدا کا تمہارے اوپر یہاں پہ یہ سبق دیا آپ نے کہ تم اس خادم کو اس کمزور انسان کو دیکھ کر کے یہ یاد کرو کہ میں بھی اسی طرح کمزور ہوں گا خدا کے سامنے تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا مارنا اس کو کہا کہ تو آزاد ہے آج سے تو اس آیت میں میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ بلیور جو ہوتا ہے اس کا دینا کس قسم کا ہوتا ہے اس دینے میں اپنی تصویر دیکھتا ہے تو اس کا دینا بھی دعا بن جاتا ہے دعا بظاہر دے رہا ہے کسی کو کچھ مال دل میں دعا نکل رہی ہے کہ خدایا ایسے ہی میرا حال ایک دن ہونے والا ہے کہ میں محتاج حیثیت سے تیرے سامنے پہنچوں گا تو اس کو تم اس کو محروم نہ رکھ کر اس کو تم اس کو محروم نہ کر تو یہ بلیور کی تصویر ہے میں سمجھتا ہوں
دس کوشچن از فرام مسٹر مصطفیٰ عمری فرام دہلی مولانا جن کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے اور وہ اس کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں
ضرور ملے گا ضرور ملے گا حدیث میں دیکھیے آتا ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس نے کسی پر ظلم کیا کسی پر بہتان لگایا کسی قسم کی تکلیف دی اور اسے صبر کر لیا دنیا میں صبر کر لیا تو آخرت میں اس کو موقع دیا جائے کہ اس کی نیکی اس کو دے دی جائے اگر اس کے پاس نیکی کم ہو تو اس برداشت کرنے والے کی گناہ اس پر ڈال دیا جائے اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کرے آپ کو بہتان لگائے آپ کا करेक्टर एसोसिएशन करे, किरदार कुशी करे, तो आप जरूर सब्र कर लीजिए उसको। सब्र करके आप एक बहुत बड़ी चीज पाएंगे, अब आखिरत का इनाम। बस सोचता हूं कि ये तो बहुत बड़ा अमल है कि आदमी बोतान पर सब्र कर ले, उसके ऐब लगाया जाए उस पर सब्र कर ले, उस पर इल्जाम तराशी कीजिए और सब्र कर ले, तो ये बहुत बड़ा इनाम है और बहुत खुशखबरी है ऐसे इंसान के लिए कि आखिरत में उसको इसका बहुत अच्छा बदला मिलने वाला है।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस राजिया फ्रॉम दिल्ली। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर मैन टू एक्सेप्ट हिज लिमिटेशंस एंड व्हाई डज ही कीप नर्चरिंग द इल्यूजन दैट ही नोज इट ऑल?
जिससे भी अगर लोग सोचते नहीं, सोचते नहीं। हजरत ने फरमाया कि अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, ये बहुत बड़ी बात है। ये अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, रोजाना हमको आपको हर एक को तजर्बा होता है कि जैसे मैंने पलट के एक गिलास उठाया, स्लिप करके हाथ से गिर गया, फौरन मैं सोचता हूं कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, इसमें यानी बेशुमार अनगिनत सितारे हैं, प्लैनेट हैं, सिस्टम है, और कहीं टकराता नहीं, कोई गिर नहीं पड़ता, कोई सितारा कहीं इधर गिर पड़े उधर गिर पड़े, कोई प्लैनेट इधर नहीं गिर पड़ता उधर नहीं गिर पड़ता, एक चमचा भी मेरे हाथ से अगर छूट गिर जाता है तो फौरन मैं सोचता हूं कि देखो आयुम समावत बलरज, अगर इस तरह से उसका अंदर यह हो कि कोई चीज छूट के गिर जाए उससे सारा निजाम धर्म भरम हो जाए। ऐसे मैं बैठा रहता हूं, आंख बंद कर लेता हूं, अचानक आंख बंद कर सोचता हूं कि अगर मैं अंधा हो जाऊं तो क्या हो। तो आंख बंद करके मैं अपने उस हालत को दरियाफ्त करता हूं, जब आंख ना हो तो मेरा क्या हाल होगा। देखिए दो तरीके हैं, एक तो यह कि जो हजरत ने फरमाया जो वाकत बीतते रहते हैं क्योंकि काम हमारा बिगड़ जाता है, कोई इरादा हमारा पूरा नहीं होता, कोई प्लानिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है, उस वक्त हम सोचें कि अपनी लिमिटेशन को जाने कि खुदा 15 बिलियन साल से इतने बड़ी यूनिवर्स चला रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, बाला अमिट फतूर। और दूसरे ये कि हम खुद कसदन ऐसा करें, हम सोचें कि ये हमारे हाथ है, क्या हम ऐसा हाथ बांध में 5 उंगलियां हो, इस तरह मेरे ऐसा खुद तरह तरह के तजुर्बे पेश आए हैं। मतलब मुझे देखे यहां पर इलेक्ट्रिक बर्न का किस्सा हो गया, बिजली लगी और सब जल गया, बहुत बड़ा सा जल गया, और ये जो अंगूठा है काम नहीं करता था, अंगूठा काम ही नहीं करता था क्योंकि टेंडर जल गया था, तो मैं कलम पकड़ नहीं सकता था। तो हमारे सर्जन जो थे वो आते थे, ऐसे हाथ करते थे ऐसी कि अंगूठा जो है बादशाह है उंगलियों का, ऐसे कहते थे किंग ऑफ द फिंगर्स है अंगूठा, ऐसे कहते थे। अब मुझे लगता था कैसा अजीब बात है, मेरा अंगूठा ही नहीं। तो हर वक्त ये तजुर्बा होता है अपनी अपनी लिमिटेशंस का, हर वक्त सुबह शाम होता है, लेकिन हम सोचते नहीं। कम से कम मैं तो जिस जिंदगी को मैं गुजार रहा हूं उसमें हर वक्त ऐसे तजुर्बात होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस, क्या आप ये सोचें कि देखो यहां भी लिमिटेशन की वजह से ऐसा हुआ, कहीं कोई भूल हो जाती है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है, कोई बात बिगड़ जाती है, कहीं कोई प्लानिंग नहीं पूरी होती, तो असल चीज है सोचना। ये दुनिया के निजाम इस तरीके से बनाया गया है, हर लम्हा एक रिमाइंडर आता है हमारे सामने, रिमाइंडर, कोई बात बिगड़ती है वहां पर वो रिमाइंडर आता है बताने के लिए. ये जो हज़रत अज़ल ने फरमाया कि अरफ़ रब्बी बफ़स्ल अज़ाइम, तो फ़स्ल अज़ाइम हर वक्त होता रहता है, उसी को अगर सोचे आदमी तो उसको मारिफत हासिल हो जाए.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर नफी शिराज फ्रॉम दिल्ली. आपने बताया कि आदमी की उम्र लिख दी जाती है कि उसे कितना जीना है, लेकिन एक हदीस में आया है कि नेकियों से उम्र बढ़ती है. दूसरी बात यह है, जब उम्र लिख दी जाती है तो फिर किसी के लिए उम्र को लंबा होने की दुआ मांगना भी बेमाना है, इसके बारे में बताएं.
जाहिर है कि हमारे दुआ करने से किसी की उम्र लंबी नहीं हो जाएगी. अपने दिल के जज्बात का जिक्र करते हैं आप, ये मुमकिन नहीं कि हमारी दुआ से किसी की उम्र लंबी हो जाए, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म है. फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं कौन कब तक जिएगा, अल्लाह ताला का इल्म है सिर्फ. ये तो इसके दुआएं का कोई मतलब ही नहीं है. हाँ, अपने दिल के यानी अब दिल की तस्कीन के लिए आप इसे दुआ कर सकते हैं. बाकी इससे पहले मैंने इस पर पूरा लेक्चर दिया था कि इंसान उम्र का मामला ऐसा कि डीएनए भी उसका इंदराज नहीं है. डीएनए में जिसमें हर चीज लिखी हुई है, डीएनए में एक एक चीज मौजूद होती है. यहां पर अगर मेरा धब्बा हो तो लिखा रहेगा, मेरा रंग कैसा हो लिखा रहेगा, मेरी ऊर्जा छोटी है बड़ी हो लिखा रहेगा. डीएनए जो है यानी ब्रिटेनिका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसकी 50 जिल्दों में जितनी बातें हैं उसके सब डीएनए में लिखा हुआ था, एक 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 इंडिविजुअल के डीएनए में. लेकिन उसमें मौत का इंदराज नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कब किसको मौत आने वाली है. जहां तक मैं जानता हूं एंजल ऑफ डेथ जो, उसको पता नहीं रहता कब किसकी किसको किसके जान निकालना है. ये तो खालिस्तन अल्लाह के इल्म की बात है. अल्लाह चाहे तो किसी को उम्र बढ़ा दे घटा दे, वो उसके इख्तियार में है. बाकी हम जान नहीं सकते उसको, हमारे इल्म में नहीं आ सकती ये बात.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर इकबाल अहमद उमरी. हम लोग नॉन मुस्लिम भाइयों के बीच में दावा वर्क करते हैं. हम आर्ट ऑफ लिविंग वालों से और ओम शांति ग्रुप के लोगों से मिलते हैं. उनका कहना यह है कि सबसे बड़ी चीज जो इस दुनिया में हमको हासिल करनी है वह सिर्फ शांति है. ऐसे लोगों को हम किस तरह तौहीद की दावत दें.
हाँ, ये वाकई एक सवाल है. हम लोग भी इस सवाल को फेस करते हैं. अब हम तो इस तरह कहते हैं कि देखिए, हर मजहब में माना गया है कि आदमी मरने के बाद खत्म नहीं होता. कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मानता हो कि मरे तो एकदम बिल्कुल मिट गए, ऐसा तो कोई मानता नहीं. मानता हिंदू मजहब नहीं, ईसाई मजहब नहीं, यहूदी मजहब नहीं, इस्लाम में नहीं, जैन मजहब में भी नहीं, बुद्धिज्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मरे तो मिट गए. तो इस वजह से शांति जो है, आज का जो हमारा समाज है उसके बेटरमेंट के लिए है. शांति न हो तो समाज में सब बात बिगड़ी रहेगी. दूसरा फायदा शांति का यह है, हम खुद शांति को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि शांति से अपॉर्चुनिटी होती है. वेयर देयर इज पीस देयर इज अपॉर्चुनिटी. इसलिए हम मानते हैं कि पीस एट एनी कॉस्ट हासिल करना चाहिए. तो शांति से हमें सुख मिलता है सोशल लाइफ में, और शांति से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने के लिए. बाकी दूसरा सवाल फिर बाकी रहता है कि जब हर मजहब ये मानता है कि मौत पर जिंदगी का खात्मा नहीं है, तो हमें मौत के बाद के लिए सोचना है, तो शांति तो यही तक काम करेगी, आगे तो काम नहीं करेगी. शांति हमें यह मौका देती है कि हम अगली जिंदगी की तैयारी करें. जहां तक मैं जानता हूं किसी मजहब में नहीं माना गया है कि मरे तो मिट गए, नहीं माना गया है. ये शायरी में लोग कहते हैं ऐसा कि जिंदगी क्या है अनासिर में जोहर तरतीब, मौत क्या है इन अज्जा का परेशान होना. ये तो शायरी है, तो उनके जहां तक हमने इन लोगों से बात की है तो हम यही कहते हैं कि आप शांति को जो इम्पॉर्टेंस देते हम भी इम्पॉर्टेंस देते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम में पीस सवम बोनम है, हम यहां तक कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब जिंदगी जो है मौत के बाद भी कंटिन्यू रहती है तो बाद के लिए क्या सोचना है? तो शांति आज के सोशल लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मसला फिर बाकी रहता है कि अपने अंदर कौन सा यानी कौन सी तैयारी की जाए कि हम उस तैयारी को लेकर जब मरे तो आखिरत में वो तैयारी हमारे काम आए। यही हम इसी का तजुर्बा हम करते हैं। मैं कि बिल्कुल लॉजिकल जवाब है।
मौलाना उनका दूसरा सवाल है कि मौजूदा जमाने में हम देखते हैं कि अगर लोगों से सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और पीस और गुड आइडियाज की बात की जाए तो वह खूब इंटरेस्ट लेते हैं, मगर वही लोग इस्लामी शरीयत के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे इबादत एट्सेट्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे लोगों को किस तरीके से कन्विंस किया जाए?
हाँ देखिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा, कॉमन ग्राउंड जो है वही स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। कुरान में कलम है सवा, कलम है सवा क्या है? कॉमन ग्राउंड जो मेरे और दूसरे के बीच में यानी इत्तफाक है, जिस पर तो जिस पर दोनों का इत्तफाक है जो कॉमन ग्राउंड है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा। अब उसके बाद अगली बात है तो जो कॉमन ग्राउंड है वो तो जब दोनों का यानी दोनों उस पर मानते हैं दोनों उसको, तो जाहिर है उस पर तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं होगा, बाद वाली बात ही में इख्तिलाफ होगा। ये तय है कि बाद वाला जो मैसेज है कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं मानेंगे। ये नामुमकिन है कि फर्स्ट पार्ट में जिस तरह सब लोग इत्तफाक कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट में इत्तफाक कर ले। सेकंड पार्ट में तो कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां मामला आ जाता है यानी अपने को बदलने का। फर्स्ट पार्ट में उन्हें बदलना कुछ नहीं है, जहां वो ऑलरेडी जी रहे हैं वहीं पर हम भी उनसे बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे भाई ठीक है हम भी मानते हैं इसको। सेकंड पार्ट में तो उन्हें अपने बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो जाहिर है कि वहां पर इख्तलाफ होगा, सारे लोग नहीं माने कुछ लोग मानेंगे, तो इट इज बट नेचुरल, ये तो होना ही होना है। पैगंबरों के जमाने में भी ऐसे हुआ और अब भी ऐसे होगा।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अफसन फारूकी फ्रॉम बॉम्बे। व्हाट आर द गाइडलाइंस गिवन बाय प्रॉफिट अबाउट थ्री टॉपिक्स, दैट इज लाइफ, नॉलेज एंड सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हाई थिंकिंग? What is the action to be taken by a person after knowing above these three things? What are the guidelines given by Prophet about three topics, that is life, knowledge and civilization in terms of simplicity and high thinking? What is the action to be taken by a person after knowing these above mentioned three things?
Look, hadith mein लाइफ के बारे में या मौत के बारे में है कि अक्सरु जिक्र हाथ बिल लज्जात अल मौत, मौत को बहुत ज्यादा याद करो क्योंकि मौत जो है लज्जतों को ठा देने वाली है। मतलब है कि जो डिजायर आपको डिबेट करती है सच्चाई से, जो ख्वाहिशें आपको इधर उधर भटका देती हैं, तो वहां पर वो चेक बन जाएगा मौत को याद करना। अक्सर जिक्र हाथ में लज्जात अलमौत, मौत को ज्यादा याद करेगा आदमी उतने ही वो इन मामलात में रियलिस्टिक बनेगा। जहां तक नॉलेज की बात है तो कुरान में वही आयत है कि माँ होती तो इल्म इल्ला कलीला, यानी हमें ये इल्म का सिरा है मैं समझता हूँ ये जानना कि हमें ये दुनिया में इल्म कलील दिया गया है, इल्म कसीर नहीं दिया गया है। इसी से दरवाजा खुलता है पैगंबर को मानने का, क्योंकि हम चाहते हैं टोटल नॉलेज तक पहुंचना, आदमी का दिमाग जो है वो टोटल नॉलेज तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मिली हुई पार्शियल नॉलेज। तो इस आयत में इस बात का सबूत है कि जब तुमको अमलन प्रैक्टिकली यह होता है कि तुमको सिर्फ पार्शियल नॉलेज मिलती है, तुम्हारा मन चाहता है टोटल नॉलेज, तो तुमको पैगंबर का सहारा लेना पड़ेगा, यानी वही का, तो बकिया की तलाफी अल्लाह ने वही के जरिए की है। जहां तक तीसरी बात है, तो तीसरी बात के बारे में तो आप जानते हैं कि हदीस में बहुत ज्यादा जोर दिया गया सादगी पर, सादगी पर। सारे साहबा सादा जिंदगी गुजारते थे, सारे पैगंबर सादा जिंदगी गुजारते थे। तो अब ये पता चला कि सादा जिंदगी सिर्फ एक रूहानी बात नहीं है, वही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये नई दरियाफ्त हुई ग्लोबल वार्मिंग के बाद। इससे पहले सादा जिंदगी को समझते थे कि भाई रूहानी वाले लोग जो है द्रवेश लोग हैं, वो सादा जिंदगी उनकी होती है। अब मालूम हुआ कि सादा जिंदगी ही हमें एक ही ऑप्शन हमारे लिए। अगर आप दौड़ेंगे लग्जरी की तरफ तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और क्या होगा फिर दुनिया भर के मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट फरमाया था कि अल्लाह में लाश आशल आखरा, आखरत में आप अच्छी जिंदगी को सोचें, दुनिया में सोचेंगे तो वो चलने वाला नहीं, डबल नुकसान। यानी दीन के मामले, दीन के पड़ोस देखा जाए तो वो डिस्ट्रैक्शन, और दूसरे लिहाज देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वसाइल साथ नहीं देंगे आपका।
This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Mulana Sahab, does Islam permit lying for a reason?
Does Islam
permit lying for a reason? Jhoot bolna.
Lie, L-I-E.
L-I-E, lying.
Achha, lying.
Lying for a reason.
Kya? Kehte hai ki aur kuch hai?
Does Islam permit lying for a reason?
Huh.
बस इतना ही है जी।
हाँ देखिए, झूठ बोलना जो है, एक तो देखिए यह है कि नॉर्म क्या है, नॉर्म उसूल कि झूठ बोलना हराम है इस्लाम में। लेकिन हमारे फिका में यह भी एक मसला है कि बाद अवकात झूठ बोलना फर्ज हो जाता है। ये फिका का मसला है, क्यों? जब आप ऑप्शन दो में का एक हो, या तो यानी सच बोल करके आप यानी बहुत बार कोई नुकसान होने वाला हो जिसको आप अफोर्ड ना कर सकें, ऐसे मौके पर झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन झूठ की दो शक्लें हैं, एक इसको कहते हैं तौरिया, एक है कि बिल्कुल वाइट लाई। तो तौरिया तो खुले तौर पर जायज है। मिसाल तौर पर तौरिया की मिसाल एक बात करता हूं कि मौलाना कासिम नौरवी थे देवबंद के, तो अंग्रेजों के उस पर आ गए थे, वो यानी लिस्ट में उनके वारंट जारी हो गया था उनके ऊपर। तो पुलिस पहुंची उनके घर पर, किसी ने बताया कि यहां रहते हैं वो फला घर में। वहां पहुंची वो तो एक आदमी खड़ा हुआ था घर के बाहर दरवाजे पर। तो पुलिस वाले ने पूछा कि कासिम नौरवी यहां रहते हैं, यहां है? तो वो खड़े हुए थे तो दो कदम पीछे हट गए, वो अभी तो यहां थे। या तौरिया, ये जहां खड़े हुए थे उससे पीछे थोड़ा सा हट गए, तो अभी तो अभी तो यही थे। तो तौरिया तो बिल्कुल जायज है, तो कोई शक नहीं। लेकिन बाद औकात ऐसा भी होता है कि वो झूठे होता, वो खिलाफ वाकया बोलना होता है, तो किसी बड़ी मकसद मसलहत के लिए। हदीस से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ वाकया बोलने की इजाजत दी। इसका एक मिसाल काबिल अशरफ का वाक्य है, अदर लघु यकूल आता है हदीसों में। तो यह मामले तीन बातें हो गई। उसूल के तौर पर झूठ बोलना बिलाशुबा हराम है इस्लाम में। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए या किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको यह सोचना पड़ता है कि अगर मैं ठीक ठीक बात कहूं तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाऊंगा। तो वहां दो चीजें होती, या तो आप तौरिया करें या खिलाफ वाकई बात बोल दें। इसीलिए सादी ने लिखा है बहुत सही कि दरोगे मसलत आमेज बेअज रास्ते फितर अंगेज, ऐसा 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 झूठ जिससे मसलहत हासिल होती हो वो फितना बर्पा करने वाले से बेटर है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ठीक ठीक बताएं तो यानी एक बस मसला खड़ा हो सकता है। बस एक डाकू आया फर्ज के लूटने के लिए किसी घर, अब आप उस मौके पर अगर बताएंगे ये उनका घर है तो घुसेगा लूटेगा, आप कह देंगे भाई तुम भटक के यहां आ गए, यहां कहां हो, तो कहीं और रहते होंगे, यहां तो कोई नहीं। तो ये ऐसा खिलाफ वाका बोलना उस वक्त फर्ज होता है क्योंकि उससे आप जान माल बचाते हैं किसी की। तो तीन शक्लें हैं बारह।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद सुल्तान फ्रॉम दिल्ली। कुरान में खुदा के बारे में आया है कि सिर्फ वही है जो ये जानता है कि अरहाम में क्या है, मगर आजकल अल्ट्रासाउंड के जरिए ये बात डिस्कार्ड हो गई है। ऐसी हालत में कुरान की इस वर्स का मतलब क्या होगा?
देखिए असल में गलती यह है कि लोग इसको समझते हैं कि लड़का है या लड़की, मेल है कि फीमेल, ये मतलब ही नहीं, ये कुरान में है ही नहीं है। ये तो कुरान में है नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है। उसमें जो है वो यानी उसकी शख्सियत क्या है, फ्यूचर में क्या बनने वाला है, ये किसी को पता नहीं। मतलब वो हिटलर बनेगा कि स्टालिन बनेगा, किसी को पता है जब पेट में है वो। तो उससे मुराद उसकी पर्सनालिटी है न कि उसका जेंडर। ये गलती हुई है लोगों की। और तफसीर भी कॉलेज मौजूद है, आप अगर पढ़े तो तफसीर में कि जेंडर मुराद नहीं है बल्कि वो क्या क्या बनेगा ये मुराद है उससे। तो ये तो एक वाकया है, ये तो कोई भी नहीं जानता इसको।
ओके, वी विल एंड दी सेशन नाउ, वील फर्स्ट हैव अ टी ब्रेक एंड देन दी नमाज। सो ऑल दोज पीपल हु हैवंट डन देयर वजू कैन डू इट नाउ इन दिस।
उनमें से एक किताब वो है जो इसका टाइटल है माइंड द अननोन। इस किताब के राइटर हैं डॉक्टर अलेक्सिस कैरल। ये किताब छपी थी 1935 में पहली बार, बहुत से एडिशन इसके छपे।